ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। 2021 बाबा की विशेष स्मृतियों का ये मास, उसमें आप सबको ये तपस्या की गोल्डन लॉटरी, एकांत शांत वातावरण का लाभ मिला है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। और मैं समझता हूँ 3 दिन में आप सबने मगन स्थिति का तो अच्छा अनुभव किया होगा। मगन हुए कि नहीं? एक है मनन करना और एक है मगन हो जाना। कहते हैं लागी लगन मेरा हो गई मगन, लगन लग गई तो मेरा मगन हो गई। लेकिन उस लगन को लगाने के लिए संगम युग पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। भक्ति काल में तो मेहनत नहीं थी उनको, क्योंकि वो लगन ऐसी थी एक वृत्ता होकर के, इतना प्यार मूर्ति से प्यार और श्रद्धा से प्यार से, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। साक्षात्कार होते थे उसके साथ, डांस करती थी, कितना भी विरोध हुआ, कितनी भी बातें सहन करनी पड़ी, लेकिन कोई परवाह नहीं की। अब बाबा कहते आप मेरी सब सच्ची सच्ची मीराएं हो, आपको तो बाबा डायरेक्ट मिला है, मेहनत की भी बात नहीं है, लेकिन माया का जो वार होता है व्यर्थ संकल्प के रूप में सबसे ज्यादा वार होता है। चलते चलते कई ऐसी बातें जो मन को भटका देती हैं, उस व्यर्थ के वार से बचने के लिए बाबा ने हथियार दिया मनन का। मन में ज्ञान का अच्छा अच्छा चिंतन करो, जो बाबा ने इतनी गहरी बातें सुनाई हैं उसकी चिंतन में जाते जाते कहते मंथन करो तो मक्खन निकल आता है। तो आप सबने मंथन करने का अभ्यास किया है? करते हो मंथन? ज्ञान का अच्छा मंथन चलता है। कोई बाबा की एक बात सुन लिया, मंथन करने का तरीका क्या होता है? मनन, जो बार बार मन के अंदर बात घूमती रहे, मंत्र की तरह चलती रहती है, उसकी बहुत सारी बातें अंदर अंदर रमण होती हैं और वही मक्खन बन जाता है। तो हम सबको ये अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातों में कारोबार के अंदर जिस प्रकार की जिसको ड्यूटी है, जिस प्रकार के कार्य में आप बिजी रहते हैं, उसी प्रकार का मनन चलता रहता है। कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस का ही मनन करेगा, कब कौन चीज सस्ती है, कब बेचनी है, कब खरीदनी है, कब क्या करना है, किस भाव में देना है, उसका भी मनन चलता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो साधारणता है, ये तो नेचुरल आपकी लौकिक जीवन के अनुसार जो कार्य मिले हैं उसका तो आप मनन करते रहते हो, लेकिन आपकी ये जीवन अलौकिक जीवन है और इस अलौकिक जीवन में अच्छी अनुभूतियां करने के लिए, अनुभवों की खान बन जाए आत्मा, उसके लिए जो कुछ सुनते हो बाबा के, जो महावाक्य सुनते हो, वरदान स्लोगन सुनते हो, मुरली की इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन अच्छी लगने के बाद अगर आपने उन पर चिंतन नहीं किया, उसका मंथन नहीं किया, तो वो भूल जाती हैं, वहीं की वहीं रह जाती हैं। इसलिए आदत डाल लेनी चाहिए, जो बात अच्छी लगती है मैंने जब शुरू शुरू में इसका अभ्यास किया था, क्योंकि हमें तो दीदी मनमोहिनी की ट्रेनिंग मिलती थी, कहती है मंथन करने की आदत डाल, कोई भी बात सुनते हो उसको उस समय भले नहीं नोट करो, लेकिन जब एकांत में बैठो तो बात नोट करो, अंदर अंदर मंथन चलेगा क्या बाबा ने आज कहा था और उसके पीछे कहने का राज क्या था, क्यों कहा ऐसा। तो 5 प्रश्न अगर लगा देते हैं, ये बात जो कही है बाबा ने इसका भाव क्या है, परिभाषा क्या है, इससे क्या हमें लाभ है, इसको हम कैसे जीवन में धारण करें, कितना समय इसके लिए अभ्यास करें, कल क्या क्यों कैसे कब कहाँ, कोई भी बात को अगर बढ़ाना हो विस्तार करना हो किसी टॉपिक का तो प्रश्न करते चलो, कब हुआ क्या हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ क्या लाभ होगा इससे। तो जब ये प्रश्न लगाए जाते हैं तो बुद्धि में उसके बारे में उत्तर आता जाता है, जो उत्तर आता है वही मक्खन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब आपको मान लो आज बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा एक बहुत छोटा स्टार है। मैं एक दिन क्या मंथन कर रहा था, चलता रहता है कुछ न कुछ बुद्धि में, पढ़ता हूँ लिखता हूँ तो आता है कितना गहराई से बाबा आत्मा को कभी कहता वो स्टार है, कभी कहता वो बिंदु है, कभी कहता वो बीज है, इसमें भी कोई अंतर है कि नहीं है, ऐसे मैंने सोचना शुरू किया क्या है आखिर बिंदु स्टार बीज, ये तो तीनों चीजें अलग अलग हैं। स्टार तो चमक रहे हैं ऊपर सितारे, कुछ को अपनी रोशनी होगी, कुछ सूर्य की रोशनी से चमक रहे हैं, हैं छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन एक एक स्टार बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ी दुनिया है, एक उसमें तो दुनिया नहीं है लेकिन इस स्टार के अंदर तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। तो स्टार है उसकी अपनी चमक है, फिर बिंदु कहाँ लगाते हैं फुलस्टॉप, कोई बातें बहुत विस्तार करनी हो बहुत बुद्धि बार बार विस्तार में जा रहे हो फुलस्टॉप बिंदु लगा दो। वैसे भी कहते हैं जब हिसाब में कोई बिंदु लगाना सीख जाता है, एक के साथ एक बिंदु लगाई 10 हो गया, 2 लगाई 100 हो गया, 3 लगाई 1000 हो गया, बिंदु का ही महत्व होता है लेकिन एक के साथ लगाना पड़ता है, ऐसे सिंगल लगाते जाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो जब बाबा के साथ तो बिंदु लगता है कि बाबा और ड्रामा और मैं आत्मा, ये 3 बिंदी बाबा ने सिखाई, मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरा बाबा बिंदु है, और ड्रामा में हर आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है नथिंग न्यू बिंदु, उसका भी चिंतन नहीं करना क्यों कर रहा है ये कैसे कर रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए ये ठीक नहीं कर रहा है। कई लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं और भारी होकर के फिर दुखी हो जाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बिंदु लगा दो, बिंदु लगा दो फुल स्टॉप, नहीं सोचना किसी के बारे में। ड्रामा का इतना अच्छा बाबा ने ज्ञान दिया, अगर इस ज्ञान को हम यथार्थ रीति से बिंदु रूप में समझ करके चलते हैं तो हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा है। बाबा कहता है कोई के पार्ट को देख करके हाय हाय नहीं करो, हेयर हेयर करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तभी तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, नहीं तो सोचेंगे इतना पुराना है, इतने समय से ज्ञान में चलता है, इतना दूसरों को लेक्चर देता है, दूसरों को कहता है, इसकी जीवन देखो क्या है कैसी है, फिर क्वेश्चन उठने लगते हैं, फिर बाबा में संशय, परिवार में संशय, फिर बुद्धि भटक जाती। बाबा के फुल स्टॉप, नहीं सोचना किसी के बारे में, हर आत्मा के अपने अपने हिसाब किताब है, हर एक आत्मा का अपना संस्कार है, हर एक अपने पद अनुसार पुरुषार्थ कर रहा है, याद रहता है, जो जिस पद को निश्चित प्राप्त करने वाली आत्मा है उस पद के अनुसार संगम युग पर उसकी रेस चलती है। अब बना ही नहीं है देवी देवता, क्या रेस करेगा, कितना भी आप उसको धक्का दे दो जाएगा आगे। तो बाबा कहता है इसलिए ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, ऐसा क्यों करता कैसे करता इसके विस्तार में नहीं जाओ, ये सब व्यर्थ है। बाबा ने अपनी स्थिति कैसे बनाई, हमारी दादियों ने कैसे अपनी स्थिति एक रस बना ली, मगन कैसे रही, मगन तभी रह सकती हैं जब इस व्यर्थ के चिंतन से फ्री हो गई। ये सोचना नहीं, बाबा ने इसके लिए मना किया है। ज्ञान मंथन किया, योग की गहराई क्या है उस पर मंथन किया, आत्मा के ज्ञान पर मंथन किया, बाबा कैसा है, कहाँ मिलता है, किस रूप में प्राप्त होता है, उससे क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उस पर मंथन किया। ड्रामा क्या है, क्यों रेत बना हुआ, शुरू से लेकर के मैंने सारी कराची की पढ़ाई पढ़ी है, कराची में जो बाबा ने पढ़ाया, जब उस पर मेरा ध्यान गया, अधिकतर बाबा ने इस ड्रामा के ज्ञान को एक बायोस्कोप के रूप में बताया। बायोस्कोप चल रहा है बच्ची, कोई बात को देख करके हलचल में नहीं आना, नथिंग, कोई बात नहीं है, निढ़ संकल्प। इस समय बाबा कहता है बच्चे, निढ़ संकल्प समाधि नहीं होती, संकल्प के बिना आत्मा नहीं रहती। लेकिन एक महीने पहले एक मुरली आपको भेजी थी मैंने, निढ़ संकल्प अवस्था किसको कहा है, याद है, टीचर्स को तो याद होगा, निर्संकल्प अवस्था। अगर कोई अच्छे सेवा के संकल्प चल रहे हैं, अपनी उन्नति के संकल्प चल रहे हैं, तो ये भी निर्संकल्प अवस्था है। बहुत बड़ी बात थी, वो समझा होगा जिन्होंने नोट किया होगा उस बात को, वो कराची के मुरली थी। तो बाबा ने अपने बच्चों को संकल्प चले, लेकिन वो संकल्प विकल्प न बन जाए। संकल्प के बिना तो आत्मा एक मिनट में नहीं रहती। कोई कहे मैं तो निर्संकल्प समाधि में चला जाऊं, ये गुफा अंदर ग्राउंड चला जाऊं, खोद करके बैठ जाऊं उसके अंदर। कई ऐसे हठयोग करने वाले थे जो कहते थे हम 8 दिन 10 दिन 15 दिन गुफा में अंदर मिट्टी के अंदर दब के रहेंगे, कोई कार्य नहीं, कोई संकल्प नहीं करेंगे। बाबा कहता संकल्प के बिना तो आत्मा एक मिनट भी नहीं रहती। ये बाजा बज रहा है इसके अंदर, है माइंड, ब्रेन है, तो ब्रेन में अगर आत्मा है, ब्रेन अच्छा है, तो संकल्प के बिना रह ही नहीं सकती। एक दिन बहुत अच्छी बात सुनाता हूँ मैं, रमणीक है, पांडव भवन के अंदर में तल्ले पर बाहर ऐसे बैठा था, शांत था, कुछ सोच रहा था, याद नहीं अभी क्या सोच रहा था, ऐसे बैठा था, ऐसे थोड़ा गुमसुम बैठा था। और हमारे जगदीश भाई की बुद्धि बहुत तेज थी, बाबा कहता था इसकी बुद्धि 7 फुट है, 7 फुट लंबी है। तो मैं ऐसे बैठा था और जगदीश भाई ऐसे पैदल कर रहे थे वहीं आंगन के अंदर, चलते चलते मेरे साथ सामने खड़े हो गए आकर, बस यही प्रश्न किया, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहे हो? और मेरे मुख से निकल गया, भाई साहब कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब ये जो कुछ नहीं शब्द मैंने बोला, अब उनका बस क्लास शुरू हो गया, कहने लगे ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं सोच रहे हो? आप सब इस पर विचार करना, पूछ देता है कोई क्या सोच रहे हो तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। तो मैंने भी ऐसे साधारण रूप में बोला था कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, क्या पता था इस पर इनका मंथन चलेगा और उस पर मेरा क्लास होगा। पहले तो 5-10 मिनट बोलते रहे, संकल्प के बिना 1 सेकंड भी आत्मा नहीं रहती। ये कल्प जो नाम पड़ा है, ये कल्प संकल्प के आधार पर पड़ा है। पूरा कल्प आत्मा जब सृष्टि चक्र में आई, सतयुग से अभी तक पार्ट बजाया है, बिना संकल्प के वो नहीं रही। बाजा मिला, उसने बजाना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। संकल्प तो सदा ही चलते हैं। योग में भी कोई कहे मैं तो बिल्कुल संकल्प नहीं कर, निर संकल्प हो गया, बाबा कहता तू कहीं नींद कर रहा होगा, तेरे को पता नहीं चलता है। बीज रूप स्टेज में भी कोई संकल्प है, मान लो आप सोचते हो मैं एकदम लाइट हूं, बीज हूं, बीज का भी तो संकल्प है ना, वो भी तो संकल्प है ना, अनुभव का भी तो संकल्प है। हाँ, बाहर का विस्तार नहीं है, इधर उधर भटक नहीं रहे, एकाग्र चित्त है, लेकिन एकाग्र चित्त के अंदर भी संकल्प है कि मैं एक ज्योति हूं, एक प्रकाश हूं, मैं एक शांति का सागर हूं, शांति के सागर में समाया हुआ हूं, कोई तो संकल्प है। बिना संकल्प के रह सकते क्या? लेकिन उस संकल्प पर ध्यान, उस पर अटेंशन है कि ये कहीं इधर उधर के व्यर्थ संकल्पों में बह न जाए, उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं, इधर न जाए उधर न जाए, नहीं तो व्यर्थ सोचना शुरू करेंगे तो उसकी बहुत बड़ी क्यू लग जाएगी। मगन स्थिति बनाने के लिए अपने संकल्प को बहुत क्वालिटी वाला बनाना है। बाबा की मुरली सुनो, कोई अच्छी बात ले लो, प्रश्न लगाना शुरू कर दो। मैंने कहा अच्छा बीज है तो बीज में तो सारा वृक्ष समाया होता है, एक स्टार है, एक बिंदु है, एक बीज है, बीज में तो इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। एक छोटा सा बरगद का बीज कितना छोटा होता है? बहुत छोटा सा, चिड़िया खा लेती है। और कहीं पर भी विष्टा किया, किसी झाड़ के ऊपर कर दिया, किसी स्थान पर कर दिया, कोई ऊपर छत पर कर दिया, उसको थोड़ी मिट्टी मिल गई और वो बरगद बनने लगा, विस्तार हो गया। कहां कहां निकल जाता है बरगद का झाड़, इतना छोटा बीज, कितना बड़ा वृक्ष उसके अंदर समाया हुआ है। आत्मा इतनी सूक्ष्म बीज जिसमें 84 जन्मों का हूबहू रिकॉर्ड जो भर गया है वो रिपीट हो रहा है, बज रहा है। चिंतन करते हैं तो ऐसे लगता है कितना वंडरफुल ज्ञान बाबा ने दिया है। कोई साइंटिस्ट ज्ञान नहीं दे सकता है, उसको पता ही नहीं है कि आत्मा भी एक ऐसा छोटा एक एनर्जी है, एक बीज है, और उसमें अनादि अविनाशी रिकॉर्ड की तरह पार्ट भरा हुआ है। और जब सुई उस पर आती है तो वही भजना शुरू हो जाता है, वो बहु पार्ट उसी समय वो बजेगा, सुई आएगी और बजना शुरू हो जाएगा। वंडरफुल ज्ञान बाबा ने दिया, लेकिन मनन किया है कभी? अगर ये मनन करते हैं तो बहुत मगन स्थिति बन जाती है, मस्त स्थिति बन जाती है। एक है लगन से योग में मगन हो जाना, और एक है बाह्य बातों से न्यारे होकर के, निवृत्त होकर के, और इस स्थिति में मगन हो जाना। क्या वंडरफुल ज्ञान है, कैसा बाबा ने हमें पढ़ाया है, घर का ज्ञान कितना वंडरफुल दिया है। पहले तो समझते थे वो ब्रह्म घर वही भगवान है, भगवान अलग है, ब्रह्म भगवान के रहने का स्थान है। कहां भटक गए थे, लोगों ने क्या सुनाया था, आत्मा जाके वहां लीन हो जाएगी, जैसे सागर में बूंद गिरती है, बुदबुदा गिरता है, समा जाता है। यही ज्ञान मिला था भक्ति में, यही ज्ञान था कि आत्मा एक बूंद की तरह है, सागर में जाएगी, ऐसे समा जाएगी। और बाबा ने कितना स्पष्ट ज्ञान दिया, अरे बच्चे जो अनादि अविनाशी सत्ता है वो समाएगी कैसे, अगर समा गई तो समाप्त हो गई, फिर बूंद कैसे बनेगी आकर के। बाबा ने हम सबको इतना प्यारा वंडरफुल ज्ञान सुनाया, कहते नया ज्ञान नई दुनिया के लिए मैं दे रहा हूं, पुराने दुनिया के लिए ज्ञान नहीं है। अब इस नए ज्ञान पर मनन करो, मक्खन निकालो, इससे क्या इससे शक्ति मिलेगी। पहले दो प्रश्न हम सबको दिए जाते थे जब शुरू शुरू में हम आए तो पढ़ाई कैसे बात, दीदियां हमारी दादियां पढ़ाती थी कि जो ज्ञान की पॉइंट्स आप सुन रहे हो, इस ज्ञान की पॉइंट में लाइट क्या है और इसमें माइट क्या है। लाइट माना उसकी रोशनी है भाई, वो ज्ञान की लाइट मिली, आप एक आत्मा हो तो हम आत्मा इस लाइट के आधार से सबको जब देखते हैं तो समान दृष्टि हो जाती है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम इस कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के पार्ट बजा रहे हैं। तो लाइट मिल गई, और इस लाइट से जैसे लाइट किसी के पास होती है तो ठोकर नहीं लगती, धक्के नहीं लगते, भाई रोशनी है। लेकिन माइट क्या मिली, शक्ति क्या मिली, से आत्मा पवित्र बन गई, शुद्ध बन गई, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो गई। आत्मा के इस ज्ञान ने लाइट क्या दी, माइट क्या दी, परमात्मा के ज्ञान ने क्या लाइट दी, क्या माइट दी, घर के ज्ञान ने, कर्मों के ज्ञान ने, पुनर्जन्म के, सर्वव्यापी के ज्ञान ने, ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है। और सब नए ढंग का ज्ञान जो शास्त्रों में नहीं मिलेगा, और शास्त्रवादी सुनेंगे तो मुंझ जाएंगे, कहेंगे ये कौन सा ज्ञान है। बाबा ने इतना वंडरफुल ज्ञान दिया, इसका मनन करो, चिंतन करो, देने के पीछे क्या लाइट है और क्या माइट है, क्या शक्ति है इसे। मान लो आज घर का ज्ञान मिला, क्या लाइट है, क्या माइट है इसके अंदर, मनन करो, चिंतन करो। जब लाइट मिल गई कि मेरा घर परमधाम है और अब ये समय जो है वो घर वापस जाने का है, बाबा बार बार कह रहे हैं बच्चे अब चलना है, अब चलना है, मैं लेने आया हूं। अगर चलेंगे तो सब हिसाब किताब चुप तो किए हैं, समेटा हुआ है, बुद्धि कहीं भटकी हुई तो नहीं है, विस्तार में तो नहीं है, कैसे चलेंगे। कहीं भी चांद जाना होता है, आप अपने घर से आए हो तो ऐसा थोड़ी सारा विस्तार करके आए हो, समेट करके जो जरूरी है उठाया और बाकी सब छोड़ करके आ गए, समेट करके रख के। बाबा के घर जाना है, वापस चलना है, तो इतना 84 जन्मों के जो बखेरे थे, बखेरे बहुत बड़ा विस्तार, संबंधों का, पदार्थों का, कई प्रकार के कर्मों के हिसाब किताब का, अब ये कुछ तो हम साथ नहीं ले जाएंगे। लेकिन जो कोई हमने पुण्य की पूंजी जमा की है, संस्कार जो हमारे अलौकिक रहे हैं, पवित्र रहे हैं, उन संस्कारों के साथ हम जब घर जाएंगे तो सजाए नहीं करनी पड़ेंगी, कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं लगेगी, सीधा बाबा के पास जाएंगे, कुछ समय विश्राम करेंगे, फिर नई दुनिया में पाठ बजाने आएंगे। इससे माइट मिल गई, इससे शक्ति मिल गई कि हम सब इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए एक्टर हैं, हमें विस्तार में नहीं जाना है, सब कुछ समेट लेना है। इस प्रकार से चिंतन करो, ज्ञान का मनन करो, तो मनन करते करते आत्मा अपने आप मगन हो जाएगी, बहुत मस्त हो जाएगी, अलौकिक नशा चढ़ेगा कि बाबा आपने मुझे कितना ऊंचा ज्ञान दिया, कैसे पढ़ाया है। मैं तो जब मुरलियां पढ़ता हूं या भेजता हूं, लगता है कि क्या ये बाबा जो कह रहा है इसका अनुभव मैंने किया है, कि मैं ऐसे ही सिर्फ दूसरों को कह रहा हूं ये करो ये करो ये करो। आज बाबा के हम इतने सारे कदम भेजे, सुनते तो है सभी, आज 7 कदम हो गए पूरे। आज के कदम पर किसी ने चिंतन किया है? हाथ उठाओ। सुन लिया? सुनने के लिए तो नहीं भेजा, पढ़ने के लिए तो नहीं भेजा, लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा मनन कर लो, उसकी गहराई में चले जाओ कि बाबा ने ऐसा क्या किया जो संकल्प और स्वप्न में भी लगाव नहीं रखा किसी से, यही था ना आज का 7वां कदम। सुना तो होगा कि नहीं सुना? या नहीं, चक्करधारी दीदी ने सुनाया तो था, संकल्प और स्वप्न में भी वो आत्मा ब्रह्मा बाबा लगाव मुक्त रहे। कैसे रहे उसका स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण में है कि बाबा त्रिमूर्ति तख्त नसीन बने, त्रिकालदर्शी बने, तीनों कालों को जान करके कर्म किए, सर्व आत्माओं को सत्कार दिया, लेकिन सब कुछ करते हुए न्यारे और प्यारे रह करके लगाव मुक्त बन गए। अब ये शब्द बाबा के सुने, मैं डेली उसको भेजे है 18 कदम, चारों तरफ चर्चा में है, चिंतन में भी है, अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा अगर बने तो क्या मैं नहीं बन सकता हूं? बाबा के तो फॉलो फादर अगर करना है, उनके समान हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो विचार तो चलाना ही पड़ेगा, ऐसे वो बन नहीं जाएंगे, वो स्थिति बनेगी नहीं। अगर बाबा लगाव मुक्त बने तो उसकी क्या निशानियां दिखाई दी? आप सब चिंतन तो करो, विचार तो करो। ब्रह्मा बाबा 1 सेकंड में ऐसे इन कपड़ों को उतारा जैसे कहते मक्खन से बाल निकल गया। पाठ बजाते, सेवाएं करते, सबके साथ संबंध निभाते, मुरली सुनाते, पत्रों का जवाब देते, सब कार्य करते करते और बाबा ऐसे शरीर से निकल गए। कोई भी आत्मा चाहे जितना स्नेही, इतनी जवाबदारियां, आज बाबा ने कहा जवाबदारियां कितनी, लेकिन वो जवाबदारियां निमित्त बनने से जितनी जवाबदारियां ली उतनी बच्चों की सबकी दुआएं मिल गई, और उन दुआओं के कारण वो जवाबदारी बोझ नहीं लगी, आज का वरदान था ये। अब ऐसी बाबा की गहरी बातें हम सुन लेते हैं, कुछ प्रश्न करो, कुछ अपने आप से पूछो, सिर्फ सुनने तक अगर रखेंगे तो मगन अवस्था नहीं बन सकती, सुन करके उसके डीप चले जाओ, इसका क्या मतलब है, क्या गहराई है, क्या हम कोई जवाबदारी लेते हैं तो हमारा बोझ है। बहुत अच्छी बात थी बाबा के वरदान में आज कि सब जवाबदारियां, ब्रह्मा बाबा ने सब जवाबदारियां, कोई एक जवाबदारी नहीं छोड़ी, नहीं तो 93 वर्ष की एज में कोई इतनी जवाबदारियां ले सकता है क्या? आधारी जानकी जी ने 104 साल की उम्र तक कोई जवाबदारी छोड़ी क्या? सब जवाबदारियां बहुत स्मूथ संभाली, और संभालते हुए बहुतों की दुआएं ले ली, लास्ट तक भी सब मना करते थे फरवरी में, जनवरी में, मार्च में सही छोड़ा है, कहीं देखो तो पूना में बैठी है, तो कभी देखो उड़ीसा में जा रही है, कभी कहीं जा रही है, फ्लाइट से उड़ रही है इधर से उधर। जवाबदारी, क्या उनको चिंतन था पता है आपको? क्या था? गीता बहन याद है, मेरा बाबा का घर भरपूर है बस। क्या मतलब था जाने का इतनी एज में? घर में जहां जाएंगे बाबा के बच्चे भरपूर कर देते थे। उनको यही लक्ष्य रहता था कि मधुबन में कभी कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। दादी के बाद ये कोई नहीं कहे कि ये चीज कमी पड़ी है, सब भरपूर रहे, भरपूर रहे, यज्ञ भरपूर रहे। इसलिए जाना, सब बच्चों को रिफ्रेश करना, कुछ थोड़ा बहुत सुनाया, ओम शांति का महामंत्र पढ़ाया, मंगोसा में सबको ले आई और सबने अपना दान, अपना जो भी सफल करना चाहा सफल किया। यज्ञ इतना निर्विघ्न चलने के लिए, कई बार हमसे पूछती थी जब हम बैठते थे ना एकांत में, कहती थी बाबा मुझे वीजा क्यों नहीं देता है, सबको बुला लिया, अभी इतनी एज हो गई, शरीर साथ नहीं देता, अभी मुझे वीजा नहीं मिलता। दादी अभी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमने कहा एक आप ही तो बैठी हैं जो बाबा का भंडारा भंडारी भरपूर है। इतनी फिक्रात, इतना अंदर संकल्प था कि ये बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, चलता रहे बस, और उसके कारण कभी भी आराम नहीं किया, रेस्ट नहीं किया, बस भरपूर रहना चाहिए। तो वो जो एक अंदर की लगन जवाबदारी थी, और जवाबदारी के कारण उस जवाबदारी ने उनको भारी नहीं किया, बहुत हल्के रीति से। अभी देखो तो डॉक्टर कह रहा है नहीं जाना है, दादी सो जाओ, कहते ठीक है, एक दो घंटा सो के कहती चलो तैयार। सुबह देखो तो आप कह नहीं सकते ये उठ के आएंगी, और देखो शाम को क्लास करा रही है। पालना देने की मुझे बाबा ने निमित्त रखा है, मुझे जवाबदारी है, लेकिन उस जवाबदारी ने इतनी धुआएं उन आत्मा को दे दी, हल्की रही, लाइट रही। मंथन करने की आप उनकी आदत देखो। एक दिन मैंने कहा दादी आपका मंथन बहुत अच्छा, मैं मंथन नहीं करती। हमने कहा कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसमें कोई भी पॉइंट्स रिपीटेड लगती हूं। मैंने 74-75 से दादी की क्लासेज लिखी है, टाइप की है, टोटल अभी तक का सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। लास्ट तक इतनी उम्र में भी कुछ न कुछ नई बात जरूर सुनाई है हर क्लास में, भले 3-4 बातों पर आ गई, सार ले लिया, लेकिन उस सार में भी कुछ न कुछ नया, नए ढंग से। ओम शांति का मंत्र भी पढ़ाए तो नए ढंग से रोज, चिंतन के बिना थोड़ी हो गया, लेकिन वो चिंतन उनका स्वरूप बन गया, वो मगन हो गई उसी चिंतन में। इसलिए कहती मैं मंथन मनन नहीं करती। वो सार स्वरूप, वो मक्खन उनके जीवन में उतर आया, इसलिए उनके जीवन से लगता था कि सुना रही हैं, अंदर उतरा हुआ है, उनके जीवन में आ गया है। उस समय मंथन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी यही अभ्यास कर रहे हैं कि कोई टॉपिक मिलती है, बहुत सारी अभी एक के बाद एक क्लास, अभी वहां करा पांडव भवन करा के फिर आपके पास आ गया, यहां से उठते ही 6:30 बजे हांगकांग ऑनलाइन क्लास है, चल रहा है, टॉपिक मिल रही है, नई टॉपिक। अंदर चिंतन किया है, मनन किया है, उसके स्वरूप में रहे हैं, कोई दूसरी बातों का चिंतन है ही नहीं। कहां से व्यर्थ आ सकता है? क्यों कहते हैं व्यर्थ आता है? व्यर्थ आ रहा है माना कहीं ना कहीं हम लोग बाहर की बातें सोच रहे हैं, तेरे मेरे में घुस रहे हैं, लेना देना एक भी नहीं, न कहते लेना एक न देना दो, लेकिन उसके विस्तार में हम जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं हो रहा है। बाबा कहते तेरा क्या जाता है, तू अपने पुरुषार्थ में रहो, अपनी मस्ती में रहो, कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, क्यों दूसरे चिंतन में जा रहे हो। सब बाबा के बच्चों को ये समय प्रेरित कर रहा है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, अचानक के पहले मुझ आत्मा को संपूर्ण बन करके बाबा के पास चलना, और उसके लिए हम सबको व्यर्थ से अपने आप को किनारा करना है। खूब अच्छी अच्छी बातों का मनन करो, चिंतन करो, उस नशे में रहो, उस अनुभव में खो जाओ, मगन हो जाओ, लव लीन हो जाओ। आत्मा लीन नहीं होगी, लेकिन प्यार में तो लीन हो सकती है, किसी के प्यार में खो जाओ। लौकिक में भी कोई किसी के प्यार में खो जाता है तो सब सुध बुध भूल जाती है, होते भी जैसे यहां नहीं है, बाबा कहता बच्चे ऐसे बाबा ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, इतना वंडरफुल ज्ञान दिया है, इतनी अच्छी हम सबको पालना मिली है, इतना अच्छा परिवार मिला है, ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिली है, कहां लोगों की जीवन देख लो आज कितने टेंशन है, पैसे पैसे के पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, कितने अंदर अंदर भयभीत है। कभी कहेंगे अभी कोरोना आया है, अभी कोरोना का बाप आएगा। आप लोगों को है टेंशन क्या? कोई टेंशन नहीं। बाबा कहते हैं आप तो सब मरे हुए हो, आपके ऊपर तो मैंने सफेद कपड़ा डाल दिया है। परसों मुरली चलाई ना, क्या कहा? कल ही थी ना, सफेद कपड़े डाल दिए, पहन लो, अच्छा लगता है क्योंकि आप मरे हुए हो सब। अब जब मरे हुए हैं तो मरे हुए को मरने का डर क्या है? इसलिए बहुत निश्चिंत स्थिति में रहो। बाबा जो कुछ ड्रामा में हो रहा है बहुत अच्छे से अच्छा हो रहा है। कल बाबा ने कहा बच्चे विनाश होगा ना, खुशी में डांस करो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। अब इसको मनन नहीं किया है, सिर्फ सुन लिया है, फिर कहते ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, 2020 तो ऐसा गया, पता नहीं क्या गया। हम कहते बहुत अच्छा गया बाबा, बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो और अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यही सब जब होगा तब तो थोड़ा आबादी कम होगी और हमारा बाबा का नया राज्य, नई दुनिया आएगी। अब नई दुनिया में चलने की एक तरफ हम तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ हम प्लानिंग कर रहे हैं, रोज कुछ न कुछ सेवाएं कर रहे हैं कि भाई हम सब देवी देवताएं सतयुग के लिए तैयार हो जाएं, और दूसरी तरफ तैयारी के साथ साथ चिंतन करें ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ, ये सरकार ठीक नहीं, फलाना ठीक नहीं। बाबा कहता है बच्चे कोई सोचो नहीं, चिंतन ये चिंतन नहीं करो, इस चिंतन को स्टॉप करो, इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है, किस प्रकार से हमारी उन्नति समाई हुई है, उसका अच्छा अच्छा चिंतन करो। कितनी प्राप्तियां हुई हैं 8-9 मास में, कई ब्राह्मण आत्माओं ने इतनी अच्छी उन्नति की है, पहले समय नहीं मिलता था, पहले ये काम यहां जाना वहां जाना, सब ने अपने पास बैठ करके तपस्या की, अच्छा मनन किया, अच्छा चिंतन किया, अच्छी अच्छी क्लासेस सुनी। कई तो कहते हैं जो हम आज तक नहीं सुनते थे वो सब अच्छी अच्छी बातें बाबा की गहरी बहरी सुन लिया, समझ लिया क्या है। जिन्होंने इसको लाभ के रूप में देखा, फायदे के रूप में देखा, उनकी बहुत अच्छी उन्नति हो गई। और जो सोचते रहे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो तो तनाव में आ गए, टेंशन पैदा हो, वो बोर हो गए। तो यहाँ पर कोई बोर हुआ हो तो हाथ उठाओ, है? बोर तो नहीं हुए ना, अभी हाथ कौन उठाएगा। इसलिए कभी भी व्यर्थ की क्यू में नहीं जाना, बहुत अच्छी बातों का मनन करो, चिंतन करो, हर दृश्य को देखते हुए इस दृश्य में क्या फायदा है, क्या बाबा चाहता है, कैसे हमारी उन्नति होगी, कैसे हमारे परिवार की उन्नति होगी, ये कल्याणकारी ड्रामा के अंदर क्या राज भरा हुआ है। बाबा कहते अच्छा बहुत बुरी बुरी घटनाएं आपके सामने आ जाएं, बहुत कड़े कड़े हिसाब किताब आ जाएं, पूछो तो अगर ये आया है तो इसमें कुछ तो सीखने को होगा, कोई तो बड़ी बात होगी, इसलिए आया है ना, ऐसे आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन करते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ, मैंने से कौन सा पाप किया था, मैं तो कभी भी कोई श्रीमत की अवज्ञा नहीं की, फिर भी मेरे आगे पेपर आ गया, ऐसे प्रश्नों में उलझना नहीं। आया है तो जरूर कुछ तो, बिना किए हुए तो नहीं आया, भले इस जन्म में नहीं किया हो, कभी तो किसी के साथ कुछ किया होगा। 84 जन्म हम आत्माएं जिनके साथ खेल खिलते पार्ट बजाते आई हैं, वही सभी इकट्ठे हुए यहाँ के संगम पर, तो जब 84 जन्मों में हम सब ने उनके साथ पार्ट बजाया है, कुछ नीचे कुछ ऊपर, कभी दुख दिया कभी सुख दिया, हिसाब किताब बनते गए हैं। अब अंतिम समय में बाबा ज्ञान योग की शक्ति दे के कहता है इनको पूरा करो, इसको चुकतू करो, इनसे न्यारे हो जाओ, इस पर विचार करो, मंथन करो। ये मंथन जिसने किया है ना, वो हर दृश्य में हर बात में कभी भी ये नहीं सोचेगा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा मेरे साथ हो रहा है, या इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। कई लोग दूसरों को देख करके भी डिस्टर्ब हो जाते, ये जो बहन है, ये जो भाई है, इसने इतना अच्छी सेवा की, इतनी अच्छी स्थिति बनाई, इसके साथ ठीक न्याय नहीं हो रहा है। अरे तेरा क्या जाता न्याय नहीं हो रहा, उसका कुछ हिसाब किताब होगा, उसका अपना कोई कर्म बंधन होगा जो चुक तो हो रहा है। बहुत साक्षी दृष्टा की स्थिति में रह करके अपनी स्थिति को बाबा के प्यार में खो जाए, मगन हो जाए, ऐसा बना लो। क्यों हम इन बातों में जाएं, क्यों क्या कैसे में, ज्ञान की बातों में विस्तार करो, क्योंकि इसका विस्तार करेंगे तो उसकी कुछ उसमें मक्खन निकले। अब कोई कहते पानी को बिलोरोगे तो क्या मिलेगा, मक्खन मिलेगा क्या? अब दही को बिलोर दोगे तो उसमें मक्खन निकल आएगा। तो ज्ञान जो बाबा ने दही दिया है हमको, इसको अच्छी तरह से मंथन करो, मनन करो, अपने स्वरूप में ले आओ। कहते हैं गऊ अगर खाना खाती है और उगाड़ना बंद कर दे तो कहते बीमार है। कोई भी पशु अगर खा लेता है और बैठ जाए ऐसे शांति से, मुंह न चल रहा हो, तो कहते हैं इसको कुछ तो बीमारी है। यहां ब्राह्मण आत्माएं अगर इतना सारा खाती हैं, उसको पचाती नहीं है, मनन चिंतन नहीं करते हैं, तो जरूर बीमार है। इसलिए हम सबको इस पर ध्यान देना है कि जो बाबा की बातें सुनते हैं सवेरे सवेरे, इसीलिए बाबा डोज देता है, नहीं तो शाम को भी जाके मुरली सुन सकते हैं, दिन में भी सुन सकते हैं। लेकिन विद्यालय के नियम अनुसार यही कहा जाता, आप सवेरे क्लास करो, सवेरे सवेरे बाबा की मुरली सुनो। क्योंकि सवेरे दो चीजें ही अगर ब्राह्मण आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए, एक अमृत वेला और दूसरा सवेरे की मुरली, इन दो बातों पर विशेष ध्यान दिया है, कभी मिस नहीं किया, वो बहुत सारी माया की बीमारियों से बच जाएगा। उसको अच्छा भोजन मिलता है, अच्छी शक्ति मिलती है, वरदान मिलते हैं, बाबा की सब शक्तियों से आत्मा समर्थ बन जाती है। तो सवेरे सुनो, सुनने के बाद दो बातें, तीन बातें, पांच बातें कुछ ऐसी नोट कर लो, चाहे धारणा से लो, चाहे सार से लो, वरदान से लो, स्लोगन से लो, पर मनन करो। मेरे को जब दीदी कहती थी मनन करना कैसे करो, कहती सुन लिया अब जाओ नक्की का सैर करके आओ, और अकेले जाना, सबके साथ नहीं जाना, नहीं तो बातें करोगे, अलग अलग जाओ और जा करके उस पर मंथन करते अच्छा अच्छा विचार करो, सैर भी हो जाएगी, और फिर बाद में आकर के जब समय मिले ना, जो चिंतन चले वो लिख डालो। मेरे पास इतनी छोटी छोटी किताबें, डायरियां बहुत सारी हैं, जब मैं ऐसे गया सैर करके आया मुरली सुनने के बाद, उसको लिखा 15-20 मिनट, एक पेज लिखने की आदत डाल लो। अच्छा मंथन, अच्छा चिंतन करने के लिए जो भी विचार चलते हैं, क्लास कराया अच्छी पॉइंट्स निकल आई, उस अच्छी पॉइंट का चिंतन करो। जो समझ में आता है कि बहुत अच्छी बात है हमारी उन्नति के लिए, सबकी उन्नति के लिए, उस पर विचार किया और उसको अपनी डायरी में लिख लिया। लिख लेंगे तो इससे क्या होगा, जब भी ऐसी बातें आएंगी, सिर्फ नहीं चिंतन चला, पढ़ लिया एक बार, देख लिया, कहीं क्लास कराना है, कहीं भाषण करना है, कहीं कोई को समझाना है, फट से देखा और चिंतन चलने लगा, बातें आपके जीवन में आ गई जैसे। इसलिए चिंतन करके अपनी डायरी बनाना, ये अगर आदत किसी ने डाल लिया, बहुत सारी व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाएंगे। और जब योग में बैठेंगे, जिसका पॉजिटिव चिंतन, अच्छा चिंतन है, बैठते योग लगता है, बुद्धि इधर उधर नहीं जाती, कंट्रोल नहीं करना पड़ता। जब ऐसे बैठे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, कईयों का योग नहीं लगता, उसका कारण है वो पहला स्टेप ही नहीं रखते, सीधा ही बाबा के पास जाना चाहते। पहला स्टेप, मैं एक छोटी बिंदु भ्रकुटी बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, मैं शरीर से निहारा हूं। जब आप इस लाइट स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो ये लाइट स्वरूप आपको इस शरीर से ऐसे अनुभव होगा, ये अलग है मैं अलग हूं। और ये अनुभव करते ही बाबा इसी रूप में है, वो भी एक ज्योति बिंदु है, और इस समय आकारी स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के आकारी स्वरूप से हमको मिलता है, मेरा भी एक आकार है चारों तरफ, जिसको 3-4 दिन पहले बाबा ने वरदान में बहुत अच्छा स्पष्ट किया था। जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है, उतनी उसके चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल बनता है, उसको ही फरिश्ता कहा जाता है। 3 दिन पहले वरदान था। फरिश्ता क्या है, सोचते रहते हैं शायद कोई ऐसे लाइट होगी, ऐसा शरीर होगा जिसमें हमको प्रवेश करना है। हम सब के साथ जिस प्रकार का चिंतन है, जिस प्रकार के विचारधाराएं हैं, उसी प्रकार का ओरा है। और आजकल उस ओरे को कई ऐसे ऐसे कैमरे बनाए हैं जो कैच कर लेते हैं, जैसे शरीर का फोटो निकालते ना, ऐसे हमारी लाइट का ओरा भी उस कैमरे में आ जाता है। साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है। अभी मैं 2 दिन पहले हैदराबाद में था तो एक भाई कहता है कि भाई साहब, हमारे यहाँ पर सेंटर पर ऐसा कैमरा लगा है जो कई बार कई ऐसी आत्माएं छाया के रूप में आती हैं और क्लास के बीच में बैठी होती हैं। हम लोगों को इन आंखों से तो दिखाई नहीं देती, लोग कैमरा कैच कर लेता है। अच्छा मुझे दिखाओ तो। कहता एक दिन क्या हुआ, एक भी भाई बहन यहां नहीं था और पूरा हाल भरा हुआ था और मेरे कैमरे में आ गया सब कुछ, तो मैं डर गया। मैंने कहा ये कौन आ गए? तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ये कौन है, भूत तो नहीं आ गए यहां पर? कहता मैं ऐसे ऐसे सोच ही रहा था तो बाबा मेरे को जैसे कहता है, बच्चे इनको कहो अभी आपका समय पूरा हो गया, अभी जाओ आप, अभी दूसरे लोगों को आने दो। कहता मैं ज्यों संकल्प ऐसे बाबा की याद में किया, वो धीरे धीरे उठे और उठ करके चले गए। ऐसे वो भी कैमरे में आ रहा है, वो फरिश्ते, वो लाइट, जो आत्माएं हैं वायुमंडल में, ऐसे नहीं सब दुख देने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं जिनको अभी तक शरीर नहीं मिल पाता है, वो भी इस वायुमंडल में है। और बाबा कहते हैं आप सब फरिश्ते मान लो ये शरीर छोड़ते हैं, भले जन्म ले लिया लेकिन जिनकी आस रहती है, बाबा की पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, तो अपने फरिश्ते स्वरूप से सभा में आके बैठ जाते हैं, वो भी उड़ करके आ जाते, बाबा उनको भी भेज देता, जाओ बच्चे योग करके आओ। एक बार बाबा ने बात कही है, आप लोगों को शायद ध्यान पर हो, मम्मा कैसे अमृत वेले करती है, अभी जो जन्म में है वो अलग बात है, लेकिन बाबा उनको भी अमृत वेला कराने के लिए बुलाता है, इमर्ज करता है। किस रूप में आएंगी वो आत्माएं? फरिश्ते रूप में आएंगी ना, साकार स्वरूप वहां है उनका। ये बहुत सूक्ष्म लीला है, प्रभु लीला। अब इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम दुनिया भर की बातों का चिंतन कर रहे हैं। अपने चिंतन को जिस आत्मा ने बहुत शुद्ध पवित्र बनाया है, उसका आभा मंडल बहुत सुंदर है, वही फरिश्ता ड्रेस है, और उसी फरिश्ता ड्रेस से हम बाबा से मिलते हैं, उसी फरिश्ता ड्रेस से हम सेवा करते हैं, एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हैं। अब बाबा कहता है अंतिम सेवा का जो स्वरूप है वो है साक्षात्कार। वाचा सेवा कर लिया, मनसा सेवा भी अभी तक हुई खूब, बाबा ने सबको प्रैक्टिस कराई, सकास दो, ये करो वो करो, सबने किया है, काफी लोगों ने किया, कोई कोई ने नहीं किया हो। अब बाबा कहता बच्चे अपने पवित्र स्वरूप में, अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के एकदम संपूर्णता का आवाहन करो और सबको लाइट का अनुभव करो, साक्षात्कार करो। तो ये सेवा अब हम सबको करनी है, लेकिन अच्छे विचारों में रमण करना, मनन करना, चिंतन करना, और बीच बीच में एकदम बाबा के प्यार में समा जाओ, मगन हो जाओ। वो मगन स्थिति है जिसके अंदर शुद्ध बुद्ध सब भूल जाए, क्या हो रहा है आजू बाजू में, हलचल समाप्त हो जाए। तो अभी हम 5 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे, क्योंकि मुझे करेक्ट 6:30 बजे हांगकांग में क्लास कराना है, उनका रात को 9 बजे का। कहती भाई जी लेट नहीं करना, ठीक है मैं आता हूँ। तो 5-7 मिनट समय है, सब बाबा की गोदी में एकदम प्यार में समाने का अनुभव करो। चारों तरफ एक बहुत सुंदर प्रकाश का आभा मंडल मुझ आत्मा के चारों तरफ है, ब्रह्मकुटी के बीच में मैं चमकती हुई मणि हूँ, और बाबा की लाइट से संपन्न संपूर्ण बनते हुए मैं फरिश्ता ड्रेस में बाबा के सन्मुख हूँ, मिलन मनाते हुए चारों तरफ और किरणें फैलाऊं।
मन का चमन हमारे की कल में लगा